জয়ারিহারি গোপীজন বল্লভ গিরি যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা যমুনা তীরবন চালি আ যমুনা তীরবন চালি আ রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি উপজন বল্লভ গিরিবর্ধধারি উপজন বল্লভ সদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদা আশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদা যমুনা তীরবন যমুনা তীরবন জয় রাধা মাধব বিহারি উপজন বল্লভ গিরিবর্ধধারি কুঞ্জ বিহারি যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা যমুনা তীরবন জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি উপজন বল্লভ গিরিবর্ধধারি উপজন বল্লভ যশোদানন্দন দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা যমুনা তীরবন জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই নিতাই গৌর হরিব 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 নিতাই জয় জয় প্রভুবার রঘুবার প্রভুবার প্রভুবার তোমার প্রভুপাত 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 প্রভু প্রভুপাত 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 নিতাই গৌর হরিব 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 নিতাই গৌর হরি গৌর প্রেমানন্দে জগমনিত্য লীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী সর্বপাদ মহারাজ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণবিন্দ কী গ্রন্থরাজ শ্রীমন ভাগবতম কী জয় নিতাই গৌর হরি প্রেমানন্দে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণম নমস্তুত্যম নরং চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু ভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবয়া ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্টকে তো আপ সবকা স্বাগত হে তৎকালীন ভাগবত কক্ষা মে আজ ক্রমকে অনুসার নবম স্কন্দ কে দুশ্য অধ্যায় কাজ সতেরোবা শ্লোক হম লোক পাঠ করেনে আর অন্তর্গত শ্রী শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ মহারাজ কে তাৎপর্য কে অনুসার হম লোক ইসো সমজনে কি চেষ্টা করেনে দৃষ্টাত দাষ্টম অভূত ক্ষত্রম ব্রহ্মভুজম গতক্ষিত নিগস্য বংশ সুমতি ভূজ্যোতি তসু দৃষ্টাদ দাস্তম অবুচ্ছত্রম ব্রহ্মভুজম গতম স্থিত নিগস্য বংশ সুমতি ভূজ্যোতিষ্ঠতো বসু দৃষ্টাদ দাস্তম অভূত ছত্রম ব্রহ্মভূয়ম গতম চিতো নিগস্যবংশ সুমতি ভূতজ্যোতিষ্ঠতো বসু দৃষ্টাদ দাস্তম অভূত দৃষ্টাদ দাস্তম অবুচ্ছত্রম ব্রহ্মভুজম গতম চিতো निगस्वन सहस्मते बुद्ध ज्योतिष्ततो वसु। हिष्टाध्यास्तम बुद्धम ब्रह्म भूयम गदंथित निगास्वन सहस्मते बुद्ध ज्योतिष्ततो वसु। दृष्टा मनुपुत्र दुष्ट से नाष्टम हस्त नामक जाति अभूत उत्पन्न हुई। क्षत्रम छत्तीस संबंध से छत्तीस समूह से संबंधित ब्रह्म भोजम ब्राह्मणों के पद को प्राप्त किया। गतम प्राप्त किया गया था छितो पृथ्वी पर। निगस्या मनु के पुत्र निग का वंश वंश सुमति है सुमति का बुद्ध ज्योति है बुद्ध ज्योति का ततः तत्पश्चात वसु वसु नाम से अनुवाद तात्पर्य सुमदस्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा मनुपुत्र दृष्टि से कृष्ट से कृष्ट से नहीं कह लिखा है मनुपुत्र कृष्ट से क्राष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली और जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के दूसरे पुत्र निग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु इत्यादि उत्पन्न हुए। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है क्षत्रम ब्रह्म भोजम गतम छितो। यदि भी कष्टगण क्षत्रिय जाति के थे किंतु वे ब्राह्मण बन गए थे। इससे नारद मुनि के निम्नलिखित कथन श्रीमद् भागवत 7:11:35 की पुष्टि होती है। यस्य जन लक्षण प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्यते तत्तेने विनिर्दिशेत। यदि एक समूह के लोगों के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाए तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता देनी चाहिए और न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वे उत्पन्न हुए हो। जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे वैदिक वांग्मय में मनुष्य के गुणों पर बल दिया गया है। अमज्ञान दिमिदंधस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुन्मीलितं जेयी तस्मै चैतन्य मनोहविष्ट स्थापित जैन भूतने स्वयं रूपकदा मह्यम ददाते शबद वंदे हम श्री गुरु ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരുനമസ്നവംസ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥൻവിദം തം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിതാശ്രീവിശാഖനിവിതം മുഖം കരൗ ദിവാചാലം പങ്കുമലം ഗജതഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാത ജയതം സുരതപങ്കൗര് മമ മന്ദമദേനഗതി മത്സരവസ്വപദാംബോജോ ശിരാധാമദനമോ വംശാകൽപതരുഭ്യസ്ത കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച്ച പതിതാനാം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാചാര്യ ശ്രീ ഗൗരഭക്ത ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 നമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രശ്നായ ബുദ്ധനെ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമന് നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിവിശേഷന്നിവാദി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കെ ഈ നമസ്കന്ധ ദൃശ്യ അധ്യായ പ്രാരംഭ സേഹി ശ്രീമനു മഹാരാജ് കെ പുത്രോ കി വംശാവലിയാ ഗിനവായി ജാ രീ ഹെ വംശജ കോ ഗിനാ രേ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ബാദ് ജെസെ ഹം ലോഗ് ഇൻ വിശുദ്ധ കെ വിഷയ മേ ജാൻ രേ തേ കെ വിശുദ്ധ किस प्रकार अपने गुरु महाराज के द्वारा स्थापित होते हुए भी भगवान की भक्ति का आश्रय करके उन्होंने इस संसार से मुक्ति प्राप्त की। इस वृत्तांत को कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि कभी ही कन्यान विशेषु निष्पनो विसृज राज्यम सह बंधुवीर वनम निवेश चित्ते पुरुषम सदोचिषम निवेश कैशोर वया परम गत और मनु महाराज के सबसे कनिष्ठ पुत्र का नाम कवि था। वो कहते हैं कि वो कवि ने जब इस प्रकार गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए श्राप को देखा और उन श्रापित होने के बाद जो अपने बड़े भाई ने किया उनको सुंदर कर्म समझ करके बहुत अच्छा कर्म समझ करके उन कवि ने उनका अनुसरण किया। कहते हैं कि वो भी हाय हाय करने लगे, निष्प्रिय विशेष निष्प्रिय हो विसृज्य कवि ही। जब कोई दुर्घटना को देखा जाता है तो दूसरे व्यक्ति उनसे शिक्षा लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये प्राय किया करते हैं। अच्छा, अपने ऊपर घटित होता है उनके बाद में व्यक्ति शिक्षा लेता है, वो ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों को देख करके व्यक्ति जो शिक्षा लेते हैं उनको बुद्धिमान कहा जाता है, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि तो उनकी कही जाती है कि जिस प्रकार शास्त्र में वर्णित हुआ है उन शास्त्र के आधार से परीक्षा न लेते हुए, किसी में नहीं देखते हुए भी उस घटना को, और जो उनसे बोध प्राप्त करके उन शास्त्र के अनुसार अपने जीवन की चालना करते वो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ बुद्धिमान। लेकिन उनसे कनिष्ठ, उनसे छोटा वही है कि जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर कुछ बीता हुआ देख करके इस संसार में कुछ ज्ञान ले सकता है। तो मनु महाराज के उन कनिष्ठ पुत्र का कोई वंश नहीं चला, इस बात को सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक में बताया। यद्यपि प्रभुपाद जी उनका तात्पर्य नहीं दिए है, लेकिन इस श्लोक से जो ध्वनित हो रही है कुछ बातें उनको आचार्य के द्वारा लिखा गया है, खास करके विजय दत्त जी अपनी टीका में इस बात को लिखे हैं। तो उनके अनुसार कहते हैं कि जब इन बड़े भाई को इस प्रकार कोई भी गलती भूल नहीं होने के बावजूद भी उनको कुलाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, उसको देख करके वो भी विषयों से निष्प्रिय हो गए। वो विषय भोग उनको फिर जहर जैसे दिखाई पड़ने लगे। तो अंततः व्यक्ति इस संसार में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो विषय भोग के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ भी शिक्षा संसार में जो ग्रंथ वैदिक हो या लौकिक विद्या, कोई भी विद्या हो, तो कुछ सुख प्राप्ति के हेतु उन विद्या को व्यक्ति प्राप्त करते हैं। तो जब गुरुकुल में इस प्रकार स्थापित हुए सुना, और वो दसों गुरुकुल में पाठ कर रहे थे, पढ़ रहे थे मनु महाराज के पुत्र, तो उन कवि ने कुछ दृष्टांत लिया, कुछ उदाहरण लिया। उन्होंने देखा ये ऐसे ही गुरु महाराज ने स्थापित कर दिया, उनकी इच्छा नहीं होते हुए उन्होंने उनके हाथ से गाय का वध हो गया था बाघ समझ करके रात्रि के अंधकार में, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको शूद्र बन जाने के लिए कहा। तो वो तुरंत वो एक कवि नामक जो दूसरा लड़का था कनिष्ठ सबसे कन्यान कवि विशेष निष्प्रिय हो, और उनको देख करके वो विशेष निष्प्रिय, बोले वो विद्या को प्राप्ति नहीं करना है। जो गलती नहीं होते हुए भी ये साप प्राप्त खिलाने वाली विद्या है, साप दे देते हैं गुरुजन, इन विद्या को प्राप्ति नहीं करना है। वो भी विरक्त हो गए, कहते हैं निष्प्र विरक्त विसृज्य राज्यम सह बंधुर्वीर भवन वनम, वो भी अपने बंधु के साथ वन में चला गया विरक्त होकर। अब उनको राज्य की अभिलाषा, शिक्षा लेकर के राज्य की अभिलाषा उनके मन में थी, उनको छोड़ दिया। ये बहुत सुंदर सदाचार का दर्शन हो रहा है। कोई व्यक्ति कोई बिजनेस में फेल होता है तो व्यक्ति को बिजनेस त्याग देना चाहिए, उन्हें प्रयास त्याग देना चाहिए, उनको भगवान का भजन करना चाहिए, है कि नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति कोई भजन में लगा हुआ है तो दोनों में देखना चाहिए भजनकारी को। तो उनको उनका इतना अच्छा फल नहीं मिला, दुख फल उत्पन्न हुआ उनके द्वारा, ये प्रयत्न में वो निष्फल हो गए, दुख प्राप्त हुआ, तो ये देख करके व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और भगवान की भक्ति में कोई निष्फल हुआ वो आज तक दिखा नहीं गया, तो बुद्धिमानी किसमें है? उसी में है कि भौतिक प्रयत्न को छोड़ दिया जाए। लेकिन जीव की जो ये विषय लालसा है वो इतनी प्रबल है कि उनको वो छोड़ नहीं पाता है, और वो मेहनत करता रहता है उसी में, उन लालसा को वो नहीं छोड़ पाता। भोगों की लालसा व्यक्ति के हृदय में इतनी प्रबल होती है कि वो बलवान होने के कारण उन बलवत्तर पक्ष को ही वो ग्रहण करते हैं, उन्होंने ले लेते हैं कि एक फैल गया, दो चार फैल गए, हो सकता है कि पूरा जगत फैल जाए, फैल कर जाए, लेकिन मेरे नसीब में अगर होगा तो मुझे मिलेगा, मुझे प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति मेहनत में लगे रहते हैं, और अपने पास नहीं है तो दूसरे के पास से उधार लेकर के भी धंधा इत्यादि व्यक्ति करता रहता है। क्यों? उन्हें भविष्य में चुका दिया जाएगा, लेकिन आएगा ये निश्चय नहीं है। भक्ति में एक निश्चित परिणाम है, उसमें फेल जाने वाले को स्वर्ग मिलेगा, निष्फल गया मान लीजिए तभी भी स्वर्ग तो प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि भक्ति में निष्फल गया है। तो बताइए ये कौन दुनिया भी भोग के पीछे लगेगा? बुद्धिमानी उसी में है कि व्यक्ति को भगवान का भक्ति में लग जाना चाहिए, निष्फल होने पर भी महान सफलता, और उधर सफल हो करके भी व्यक्ति निष्फल हो जाता है, क्योंकि कितना भी धन संपत्ति पुत्र परिजन यश इत्यादि इन जागतिक पदार्थों को भी जीव प्राप्त कर ले तो उन जागतिक पदार्थ से जीव का क्या भला होगा, वो तो निष्फल, उनको तो वो जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो तो मिलेगा नहीं, वो सुख तो मिलेगा नहीं। सुख काय कर्माणि करोति लोको, नहीं सुख के लिए इस संसार में व्यक्ति कर्म करते हुए दिखा, लेकिन उनको सुख तो मिलता नहीं, उनका दुख दूर होता नहीं है। इसलिए जो ये निर्णय कवि जी के द्वारा लिया बहुत अच्छा है। बड़े भाई को जब अध्ययन के बीच में ही फेल होता हुआ दिखाई पड़ा, रहे आशीर्वाद के लिए गुरुकुल में गए थे, विद्यापक आ रहे वहां गुरु जी का श्राप लेकर के आए, और जबकि कोई गलती नहीं था, तो बोलते ऐसे जगत में रहना ही ठीक नहीं है, क्या गलती नहीं होने पर भी गलती गिनाया जाता है, वो तो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार भी कुछ दोष के कारण ये घटनाएं होती रहती है, क्या करें ये संसार। इसलिए इन कर्म से पीछा छुड़ाने में ही बुद्धिमानी है। तो कवि जी ने सोचा, इसे कहते हैं कनियान कवि विशेषण, वो अपने भाई को देख करके विषय से वो विरक्त हो गए, और सहबंधु भी वनम गत, और वो अपने बंधु के साथ वन में चला गया, और निवेश चित्त पुरुषम सरोचिषम, कहते वही प्रकाशमान दीप्तिमान पुरुष में अपना अभिनिवेश बना करके निवेश चित्त अवसर चित्त में उन्हीं ज्योतिर्मय पुरुष का वो चिंतन करते हुए विवेश कैशोर वया परम गत, और इसी प्रकार वो किशोर आयुष्य में ही वो परम गति को प्राप्त हो गए, अर्थात वो मुक्त हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि मनु महाराज के कनिष्ठ पुत्र का कोई वंश आगे नहीं चला, क्योंकि विवाह ही नहीं किया, तो वंश आगे उनका नहीं चला। अगले श्लोक में कहते हैं, 16वें श्लोक में, तो 17वां श्लोक दो का तात्पर्य नहीं है, इसे उनको हम पढ़ लेते हैं। कहते कुशारान न कुरुशान मानवन मानवदासन कारुषा शब्द जाते उत्तरा पथ गुप्ता और ब्रह्मण्य धर्म वत्सला। और कहते मनु के अन्य पुत्र कुरुष्य उन कारुष वंश चला, कारुष नामक क्षत्रिय उनसे उत्पन्न हुए जो उन उत्तर भारत के रक्षक माने गए हैं। और कहते कि उन उत्तर दिशा के वो लोग राजा हुए और वो ब्राह्मण संस्कृति के भगत थे, मनु महाराज के पुत्र थे स्वाभाविक। तो स्वभाव से वो गो ब्राह्मण रक्षक थे, अत्यंत धार्मिक क्षत्रिय हुए। तो वो उत्तर दिशा का इस प्रकार उनके द्वारा रक्षा किया गया। और आज के श्लोक में इस श्लोक में बता रहे हैं कि दृष्टाद दास्तम अभूत क्षत्रम। और उनके एक दूसरे पुत्र मनु महाराज के जिसका नाम दृष्ट था, ये इस लिखने में छापने में गलती है क्या है, दिखाई पड़ता है दृष्टा, एक मिनट अगले देख छापने में भी गलती है तो मालूम पड़ जाएगा। दृष्ट है तो वो दृष्ट नामक जो मनु महाराज का दूसरा पुत्र था तो उससे दृष्ट नामक क्षत्र उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उत्पन्न हुए। और कहते हैं वो लोग क्षत्रिय नहीं रहे, ये कहते ब्रह्म भुजम गतम क्षितो, और सारे ब्राह्मण हो गए जितने भी उत्पन्न हुए उन क्षत्रिय वंश में। वो लोग ने अच्छा नहीं समझा, अरे बोलते ये घोर स्वभाव वाला वो क्षत्रियपना कौन करेगा, इस संसार के इन घोर कार्यों से जो डरते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। क्योंकि ये जघन्य कार्य, ये जो घोर कार्य होता है वो अत्यंत निंदित कर्म को कराता है, स्वाभाविक कर्म में व्यक्ति को घसीटता है। तो क्योंकि वो क्षत्रियों के यहां प्रकटित हुए थे लेकिन उन्होंने अच्छा माना ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मणत्व ठीक है हमारे लिए, इच्छात्र स्वभाव ठीक नहीं है। या स्वाभाविक वो लोग ब्राह्मण हो गए मैंने हमें क्षत्रिय नहीं बनना है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो क्षत्रिय कदाचित उन छात्र स्वभाव के अनुसार उसमें शौर्य इत्यादि नहीं है, वीर्य इत्यादि नहीं है, इसलिए वो लोग ब्राह्मण बन जाते, ये बात नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव को सतगुण रजगुण मिश्रित स्वभाव बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, उन 18वें अध्याय में जो वर्णाश्रम के व्यवस्था भगवान ने दिया है, तो उन व्यवस्था के अनुसार उनके कर्म स्वभाव के अनुसार कर्म का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो क्षत्रिय स्वभाव है वो सतगुण रजगुण का मिश्रित स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव वाले को क्षत्रिय बोला जाता है। कुछ उन रजगुण के कारण वो कुछ ऐश्वर्य इत्यादि चाहते हैं और स्वाभाविक उनमें विद्या इत्यादि है, ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो किसी से डरता नहीं है। सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति भी डरता नहीं है, वो डरेगा नहीं भाई, उनके हृदय में नहीं होता है, क्योंकि सतगुण होने के कारण उनको पूरी पूरी समझदारी होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई किसको लगता है अपने कर्मों का पाठ जो नहीं कर पा रहा है, अपने कर्म का फल देख नहीं पा रहा है, वो भयभीत रहता है फल से, क्या होगा क्या होगा, سکسیز ہوں گے کہ نہیں, نہیں تو وہ بھیبھیت رہتے ہیں. تو وہ چھاتر سبھا میں جو رجگن آتا ہے وہ رجگن ایک پیرنا دیتا ہے ایک جیو کو کرم کرنے کا, اور وہ کرم کیا ہے, وہ گھور کرم میں پروت کرتا ہے رجگن. گھور کرم کا ارتھ ہوتا ہے ایسا بھیانک کاریہ, یا ایسا سوریہ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ کاریہ کرنا, نہیں ہے تو زبردستی لے لیں گے, اس کو گور سبھا بولتے ہیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرے کا بھی زبردستی لے لیں گے, ڈرنا کیا ہے, ستگن تو ہے جی, اس سے ڈر نہیں ہے ان لوگ کو. اور کچھ رجس کے کارن اور چھتریوں میں سوبھاوک بل اتیادی رہتا ہے, تو ان بل کے کارن وہ اپنی بھوجاؤں میں کے اوپر ان کو وشواس ہوتا ہے. تو وہ آداب ستگنی سبھاؤ ہونے کے کارن کبھی کبھی نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے, جیسے ہم پاتے ہیں شمد بھاگوتم نے اور شبھ دیو کی سنتان, یدپی وہ بھگوان کے اوتار تھے لیکن تھے وہ کھتری, ان کھتر سبھاؤ کے انوسار بھگوان شبھ دیو کے 100 پتروں سے 81 پتر براہمن ہو گئے نا, اور 9 یوگیشور ہوئے اور 10 نے اس بھومی کو بھوگا, تو 100 پتر میں سے 81 پتر وہ براہمن ہو گئے. براہمن کا تو برہم جانا تھی براہمنا, انہوں نے ان جگت کو سدبدھی دینے کا ویوسائی کو اپنا ویوسائی مانا. اب بھگوان جن کو آدر دیتے ہیں ان براہمنوں کو بھگوان آدر دیتے ہیں, کیونکہ براہمن سنسکرتی سے اور لوگوں کو یہاں اس سنسار میں بہت شکشا ملتی ہے, اس لیے بھگوان بھی براہمنوں کو آدر دیتے ہیں. کہتے گو براہمن ہتایت چ, گائے اور براہمن کا بھگوان سدیو ہتیشی رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ دونوں اس جگت کے لیے اتینت اپکاری ہے. تو ان براہمنوں کے دوارا کیونکہ ان جگت کا اپکار کاریہ ہوتا ہے, تو اتا یہ جو دات وہ دشت تھا منو مہاراج کا پتر, ان کا جو ونش چلا وہ کھتری ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ براہمن بن گئے. شری پربھوپاد مہاراج اپنے تاتپر میں ان 7ویں سکند کے 11th ادھیائے کا شلوک کوٹ کیا ہے, جس یلکشن پروکتم پنسو ورنا ابھیوجکم ید انتاپی دشیت تتین ایو ونردیشت ونردیش. کہتے ہیں کہ جو پروش میں ان کی جاتی ان کا آشرم دکھانے کے لیے, جاتی دکھانے کے لیے, ون دکھانے کے لیے جو لکشن بتائے گئے ہیں, اگر کوئی دوسری جاتی والے ویکتی میں وہ لکشن دکھائی پڑتا ہے, جاتی دوسری ہے یا دوسرے ون کا کوئی ویکتی ہے, لیکن ان میں اگر ان پہلے والی جاتی کا لکشن دکھائی پڑتا ہے تو ان کو وہی ماننا چاہیے, کیونکہ یہاں پر کرم کے آدھار سے کوئی ویکتی نے جنم کے آدھار سے کوئی ویکتی امک ورن کا ہے ایسا نہیں مان لیا جاتا ہے. اب بھلے ہی ملناشرم کے انوسار پرائے ایسا ہوتا ہے, پر ایسا نہیں کہ نشچت ایسا ہوگا ہی. جیسے کوئی براہمن کل کا کوئی ویکتی ہے تو وہ شدر ہو جاتا ہے, کئی بار ایسا دکھائی پڑتا ہے, پرائے ایسا ہوتا ہے کہ ان میں براہمنکل گن رہتے ہیں, لیکن وہ نہیں بھی رہتے ہیں तो जन्म के आधार से वर्ण निश्चित नहीं किया जाएगा, ये कह रहे प्रभुपाद जी। इसलिए ये कहते हैं कि दाष्टगण क्षत्रिय जाति के थे किंतु वे ब्राह्मण बन गए, इससे नारद मुनि की उक्ति ठीक उतरती है। श्री नारद मुनि के प्रवचन है सप्तम स्कंद में, सातवें स्कंद में। तो श्री नारद मुनि ये कहते हैं कि उन जाति लक्षण या उन कोई व्यक्ति का स्वाभाविक दूसरी जाति का लक्षण दिखाई पड़ता है, उनके कुल से विपरीत लक्षण का दिखाई पड़ता है, तो उनको उस जाति का मानना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण है वो खैनी में नहीं खाता है तो वो शूद्र है स्वभाव से, उपरी कर्मकांड इत्यादि के वो योग्य नहीं रह जाता है, वो नहीं करा सकता है। या जिनमें आत्यंतिक लोभ है और भोग की प्रबल स्प्रिया है, उनको कैसे ब्राह्मण कहेंगे, जो प्राय कलयुग में ऐसा होता है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन भरी सभा में उन ब्राह्मणों को ऊपर उठा करके गिराया था, नहीं पहले खूब उनका पोषण किया शास्त्रों से, ये ब्राह्मण धन्य है, यह है वह, उनके बाद में महाभारत का श्लोक कोट करके बोले, लेकिन कलयुग में ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में प्राय उन ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट रहती है और उनका इन कलयुग को पा करके जो पूर्व जन्म के जो लोग दैत्य इत्यादि असुर थे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी का वर्ण निश्चय करने में जन्म कारण नहीं होता है अपितु स्वभाव कारण होता है। और भगवान भी भगवद गीता में कहते चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये चार वर्ण की सृष्टि जो मेरे द्वारा हुई है वर्ण आश्रम की, तो वो स्वभाव के आधार पर हुई है न कि जन्म के आधार पर। ठीक है जन्म मिला है ब्राह्मण कुल में तो ब्राह्मण होने का चांस, इसलिए ब्राह्मणों के परिवार में भी द्विज की दीक्षा दी जाती है, द्विजाति की दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मणिकल दीक्षा जब वो लेता है तब उनके बाद में वो ब्राह्मण माना जाता है, तो क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव शूद्र है, इसलिए उनको ब्राह्मणी दीक्षा। उन्होंने ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण दीक्षा क्यों दी जाती है, जो ब्राह्मण संस्कार अभी वो ग्रहण करेगा यज्ञोपवीत धारण करके, लेकिन अगर ये दो तीन दिन स्नान नहीं करता उनको कैसे ब्राह्मण माना जाएगा। आज के जो ब्राह्मण लोग हैं जनेऊ, लेकिन जनेऊ भी ऐसा काला हो जाता है और केवल चाबी टांगने के लिए रखते हैं खूंटी की तरह, केवल चाबी टांग देते हैं और वो दो दो तीन तीन दिन तक स्नान भी नहीं करते हैं, उनको कैसे ब्राह्मण कहा जाएगा। और वो कहते थे आप क्यों है, तो बोले सर्विस कर रहे हैं कोई टाइम नहीं, तो सर्विस क्यों करते हैं ब्राह्मण होकर के, ये तो स्वभाव नहीं है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को वेदा अध्ययन करना चाहिए और वेदा अध्ययन कराना चाहिए, ये तो ब्राह्मणों का। तो आप स्वभाव से च्युत हो गए, अतः वो अगर वणिक स्वभाव का है तो उनको वणिक मानना चाहिए, वैश्य मानना चाहिए, उनको ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। ठीक तो लिख रहे प्रभुपाद जी है कि नहीं, एकदम ठीक लिख रहे। यद्यपि जो वर्णाश्रम व्यवस्था या ऋषिमुनियों के द्वारा जो स्थापित वह व्यवस्था है, वो व्यवस्था सुनिश्चित व्यक्ति को सुखी करने के लिए है। व्यक्ति दुखी हो जाता है, अरे हम लोग ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ फिर भी ये लोग ऐसा कैसा निंदा करते हैं। तो वस्तुतः उन कुल के अनुसार व्यक्ति को अपना स्वभाव अगर विपरीत भी है तो डेवलप कर लेना चाहिए, है कि नहीं। उन ब्राह्मणिकल गुण को वो प्राप्त कर ले, संसार में गुणों को प्राप्त करना, और इसीलिए तो ये इस संसार की रचना भगवान ने किया है। व्यक्ति का कैसा भी बिगड़ा हुआ स्वभाव है लेकिन यहां संगति से स्वभाव को सुधारा जा सकता है। संगति से व्यक्ति का स्वभाव सुधरता है। अगर कोई व्यक्ति सत है फिर भी अगर सत्संग उनको प्राप्त हो जाए व्यक्ति सुधर जाता है संगति से। और कैसे सत सुधरते है कि नहीं, कई उदाहरण है दुनिया में। जैसे वाल्मीकि जी, वो तो लुटेरा था, शूद्र जाति में जन्मे हुए वालिया, वो तो लुटेरा था। या कोई भी जाति में उत्पन्न हुए हैं लेकिन वो थे स्वभाव से, उनका कर्म ठीक नहीं था। नारद जी की संगति से तो देखिए, एक महान ऋषि नहीं, भगवान के महान भक्त नहीं, अभी तो ऐसे भक्त कि जिन्होंने चरित्र रामचरित्र पहले लिखा और रामचंद्र जी ने तद अनुसार आचरण किया। सोचिए भगवान ने भी, मेरे भक्त ने लिखा है वैसा ही आचरण मुझे, या फिर रामचरित्र को भगवत चरित्र को जान लिया और पहले लिख दिया, यही कहना ठीक है। भगवत चरित्र को उन्होंने जान लिया, कितना स्वभाव डेवलप किया। तो स्वभाव सुधारने के लिए श्री भगवान ने इस जगत का निर्माण किया। हमारा अनेक प्रकार का दोषों के साथ हम अनेक प्रकार के स्वभाव को घसीट रहे, तो ये संसार जीव की भोग की सामग्री नहीं है, खास करके मनुष्य। दूसरे प्राणी भोग करे, इतर योनियां वो भोग के लिए बनाई गई है। मनुष्यत्तर जितनी योनियां हैं वो भोग के लिए, मनुष्य योनि इनमें से सुधार करने के लिए है। ये जो मनुष्य योनि है वो जीव के सुख हेतु निर्माण किया है, इसमें विवेक रहता है, सारा साल का विवेक। कितना भी नीच योनि का मनुष्य है लेकिन मनुष्य में विवेक है कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। प्राणियों में विवेक नहीं है, इसलिए इस संसार में जो मनुष्य प्राणी है उनको विवेकी कहा जाता है। क्योंकि धर्म एक अधिक विशेष, इसमें ये धर्माचरण जो है वो अधिक बताया गया है, बाकी तो समानम ये तो पशु विनारणम, ये जो चार प्रवृत्ति आहार इंद्रा वायु मैथुनम च, ये तो समानानम कहते हैं, वो समान है। तो मनुष्य धर्म ही अधिको विवेक, क्योंकि ये विवेक रूपी जो एक उनको स्वभाव प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त वो कर सकते हैं स्वाभाविक। उन मनुष्यों में कितनी भी नीच वर्ण योनि में उत्पन्न है लेकिन है मनुष्य, उनके पास विवेक होता है। तो विवेक का आधार लेकर के व्यक्ति अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। यद्यपि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा स्थापित है, उनका आधार भी लिया जा सकता है, लेकिन कभी कभार जैसे भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करके कोई व्यक्ति लिप्त सिद्धा प्राप्त कर लेता है, भगवत भक्ति रूपी एक ऐसा हथियार को प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि हमारी संस्था में भक्त निर्माण किए जाते हैं वैष्णव, और ये वैष्णव उन जरूरत पड़ने पर छात्र, जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है ना, ऐसे कुछ किसी भी स्वभाव को ग्रहण कर सकते जरूरत पड़ने पर, तो सर्वश्रेष्ठता को जीव प्राप्त कर लेता है। जैसे देखिए, ये एक ही मनु महाराज के पुत्र ने भिन्न भिन्न स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न वर्ण प्राप्त किया। इस लोग से प्रभुपाद इसी बात को लिख रहे हैं, कि वो लोग क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म भुजम गत वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर, उसका अर्थ कोई शूद्र होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है।
अंत्यज होते हुए भी शूद्र क्या अंत्यज कहा जाता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर है उनको अंत्यज बोलते हैं। ये पुलिंद खस इत्यादि जो जातियां है जंगली जातियां यवन इत्यादि तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर है लेकिन वो लोग भी भगवान के भक्तों की संगति या भक्ति के संपर्क में वो आ जाता है तो वो भी अपने आप को पवित्र कर लेगा। तो मनुष्य योनि अपने स्वभाव को सुधारने के लिए है और भगवान ने यहां वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ इन भक्ति का व्यवस्था भी जीवों के लिए रखा है। अपने भक्तों को भी भगवान ने इस संसार में रखा है और भक्ति का प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं और इस प्रकार जीवों का सुधार यही उद्देश्य है कि संसार के जगत का रचना भगवान ने किया। इसलिए ब्राह्मणों को भगवान ज्यादा पसंद कर ब्राह्मणों को अपना पूजनीय मानते हैं से भगवान ब्राह्मणों को पूजनीय समझते हैं। और क्या कारण है कि ब्राह्मण पूजनीय कौन कहते हैं एक जगह भगवान की उक्ति को कोई भक्त मैं भूल रहा हूं श्रीमद् भागवतम से कहीं पर लिखा है जब भगवान बहुत बढ़कर के ब्राह्मणों का प्रशंसा कर रहे हैं वो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कौन बोल रहा है उक्ति किसका है तो ब्राह्मण भगवान को कहते हैं अरे भाई पूजनीय तो आप हैं हम थोड़ी पूजनीय है सारे संसार के उच्च और सारे जगत को सब कुछ प्रदान करने वाले उन जगत के पिता माता दाता तो आप हैं तो आप पूजनीय है ना हम थोड़ी पूजनीय है ये तो आपके द्वारा सम्मान प्राप्त आप ब्राह्मणों को सम्मानित करते हैं ये कहते हुए कि ब्राह्मण मेरे पूज्य है और ये कहते हैं आप ब्राह्मण को सम्मान प्रदान करते हैं वास्तव में पूजनीय तो आप तो ठीक बात है पूजनीय भगवान है लेकिन क्योंकि ब्राह्मण कल्चर शिव भगवान के ऐसे स्वभाव का प्रचार प्रसार करके और दूसरे लोगों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं या कम से कम भगवान के जो नियम कानून या वेदाध्ययन इत्यादि है या कर्मकांड इत्यादि वो कराते हुए उनको सदगति प्रदान करते रहते हैं वो अधोगति प्राप्त न हो मनुष्य होने के बाद अगर किसी का अधोगति हो जाए ये ठीक नहीं है इसलिए ये वर्ण व्यवस्था रखा गया मनुष्य में ये अधोगति प्राप्त न करे कम से कम वरना तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अधोगति की ओर क्योंकि सामान्य मन का गति जैसे वो प्रभु जी कह रहे थे रमाकांत प्रभु मन का स्वभाव है अधः गति वो नीति की ओर जाता है भोगों की ओर ज्यादा बहता है स्वभाव है वो भोगों की तो अधोगति निश्चित व्यक्ति अपनी कर लेगा इसलिए ब्राह्मणों को रखा गया है इसलिए शास्त्रों का रखा गया है कि व्यक्ति अधोगति न कर ले उत्तरोत्तर उनको ऊपर के स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। तो देखो हमारा सद्भाग्य क्या है एक महान भक्त का हमें संगति है तो ये महासद्भाग्य को प्राप्त हुआ जीव को सोच समझ करके वो शीघ्र अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए वो अपने उन जन्म वाले स्वभाव को या अपने कर्मों के आधार से जो स्वभाव उनको प्राप्त हुआ तो कहते गुणातीत भक्ति का आश्रय लेते हुए व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र गुणातीत हो सकता है। ये तीन गुण के अंतर्गत ये स्वभाव है वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो त्रिगुणात्मक है लेकिन गुणों से परे व्यक्ति को उठना है इसीलिए इन मनु महाराज के जो पुत्रों को कहीं क्षत्रिय कई लोग ब्राह्मण और कई लोग सिद्ध आगे के दो लोग सिद्धि प्राप्त की है अब भले वो ब्रह्म सिद्धि प्राप्त की है लेकिन सिद्धि प्राप्त की है सिद्ध तो हो गए इसे श्री मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हुए उन मनुष्यों को उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश इससे मिलता है? इससे यही उपदेश मिलता है कि व्यक्ति अपने ऐसे स्वभाव को प्राप्त करे जो वास्तविक स्वभाव जीव का है, वो है कृष्ण दासत्व। भगवान की सेवकाए जीव का स्वभाव है, तो उसी को वो जीव अपने ओरिजिनल मूलभूत स्वभाव को प्राप्त हो, इसलिए इन मनु महाराज की वंशावली को इसमें गाया जाता है। और तद अनुसार कैसे कोई ब्राह्मण हुए और कोई लोग क्षत्रिय हुए, तो कितने सुंदर क्षत्रिय जो ब्राह्मण गो ब्राह्मण के हित जो भगवान चाहते हैं उसी प्रकार का ख्यात धर्म का उन्होंने पालन किया, और कोई कोई लोग सिद्धा ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए, कोई लोग ब्राह्मण बने। देखिए तो कुल मिलाकर के हमें इन श्रीमद् भागवतम से या हमें इस पाठ से शिक्षा लेना चाहिए कि जब इतना अचिंत वस्तु श्री भगवान की भक्ति गुणातीत भक्ति हाथ में लग गई है, तो उन गुणातीत वस्तु का संग प्राप्त करके, भगवत भक्तों का संग प्राप्त करे, भक्ति का संग प्राप्त करे, भक्ति को अर्जन करते हुए अपने स्वभाव को गुणातीत कर ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई जिज्ञासा किसके पास है? एक मिनट बाकी। दास स्वभाव, स्वाभाविक दास का नाम ही होता है सेवक स्वभाव। दास स्वभाव का अर्थ सेवा की भावना। तुम्हारा भाव अच्छा है और तुम्हारा स्वभाव ही है जैसे तुम सबकी सेवा करते हो। अगर ये स्वभाव व्यासन पर पहुंच गया फिर भी यह स्वभाव रहेगा, मान लीजिए विद्या अर्जन करते हुए तुम व्यासन पर पहुंच गया, बहुत चांस है अगर बुद्धि मिल गया है प्रवचन करने का बुद्धि, और तीस पर भी ऐसा स्वभाव अगर रहेगा तो उनको दास स्वभाव माना जाता है। जीव का मूलभूत स्वभाव है दास स्वभाव। यहां बैठ करके अगर गर्व नहीं होता है कि नहीं वो पहले का बात दूसरा, तब तो मैं नया भक्त के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन आज शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा प्राप्त करके मैं अभी एक विद्वान हो गया हूँ, अभी मैं कुछ सेवा नहीं करूंगा, अभी झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, अभी तो केवल प्रवचन करूंगा। उसी को दास स्वभाव कहते हैं। अगर वो नहीं बदला और अभी का स्वभाव रहा, धन्य। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। शिष्य दारा गिदारी भगवान की जनता आई गौर हरिपमनंदे संसा कल्पद्रवश्य।